मुश्किल अल्फाज की वजाहत। वतलु अलैहिम नबा, वतलु जो है क्या है इसका रूट वर्ड? तालाम वाबी और तालाम याबी। तो इसके माने के अंदर पढ़ना भी होता है कि पढ़ना, और दूसरे माने क्या होते हैं कि किसी के पीछे पीछे आना। तो जो हम पढ़ते हैं तिलावत करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो तिलावत कर रहे होते हैं उसके पीछे पीछे आना होता है, यानी हमारा अमल तिलावत के पीछे पीछे आता है। तो वतलु यानी तिलावत से है, नबा खबर को कहते हैं, और वैसे यही इसका रूट वर्ड है। अरबी जबान में खबर भी अरबी जबान का लफ्ज है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आम खबर को कहते हैं। जब नबा आएगा तो बड़ी खबर, अजीम खबर को, खास वाक्या उसकी तरफ इशारा करना मकसद होता है। अब यहाँ पर क्या है, इब्नैन था, इब्नैन यानी दो बेटे। तो आप देखें इब्नैन मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को कुरान में नून नजर आ रहा है आखिर में? नहीं नजर आ रहा ना, तो नून जो है ये गिर जाता है। बाज़ औक़ात जब तस्निया और जमा होता है, होती है कोई चीज, तो मजाफ का नून जो है वो गिर जाता है। तो ये है इब्नैन, इब्नैन था, इब्नैन रह गया। तो या को देख के पता चल रहा है कि इसका नून जो है वो तस्निया का गिर गया है। तो दो बेटे हमने पढ़ा था ना कल, इब्न किसे कहते हैं? बेटे को, एक बेटे को इब्न कहते हैं। तो इब्नैन कितने बेटे हैं? दो बेटे। और यहाँ पे नून तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन या से फिर भी पता चल रहा है कि दो बेटे मुराद हैं। और बेटे किसके हैं? आदम, आदम अलैहिस्सलाम के। फिर है कर्रबा, असल में कर्रबाने था, ये भी कर्रबाने था। और ये लफ्ज जो है ये निकला है कुर्ब से, काफराबा। कुर्ब के माने क्या होते हैं? करीब होना, किसी का पास होना। तो यानी इसी तरह यानी कुर्बानी के लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है। क्यों? ये कुर्बानी जो है वो इंसान को अल्लाह के करीब करती है, अल्लाह के कुर्ब का वो जरिया बना देती है। तो कुर्बान का लफ्ज सदके के लिए बोला जाता है और कुर्बानी के लिए भी। और जो चीज भी अल्लाह की खुशनूदी के लिए दी जाए, अल्लाह के कुर्ब इलाही के लिए उसको पेश किया जाए, तो वो क्या है? वो कुर्बान है। तो कुरान ने यहां पर यही बताया कि कर्रबा। तो यहां पे क्या है? कर्रबाने था, फिर नून गिरावा है कि उन दोनों ने कुर्बानी की। मैंने आपको बताया था ना, वाहिद के आखिर में अलिफ नून या नून लग जाए तो वो दो बन जाते हैं एक ही बजाय। फिर इसके बाद है लअक्तुलन्ना का, के क्या है इसका मतलब? कि मैं जरूर बजरूर तुझे मार डालूंगा। तो जरूर बजरूर, तो ये दो दफा मैंने जरूर बजरूर कैसे कह दिया? पहला जरूर किसकी वजह से है? लाम की वजह से, ला। दूसरा बजरूर किस लिए है? नून पर जब शद आती है तो उसके मानी भी ताकीद के होते हैं। तो लअक्तुलन्ना का, मैं जरूर बजरूर तुझे कत्ल करूंगा। इसके बाद जो है हमें क्या मिलता है? मुत्तकीन, मुत्तकीन का रूट वर्ड क्या है? वो काफिया, वकिया, इसका मतलब होता है बचाना, बचना और फिर वो जो बचना चाहता है अजाब से, सजा से, तो दुनिया में गुनाहों से बचता है, तो मुत्तकी बन जाता है। आगे लफ्ज है ला अलबत्ता इन अगर, लाइन अलबत्ता अगर, यानी अगर के माने भी देता है अलबत्ता के। बासीन तोए, लफ्जी तौर पर बासीन तोए के माने होते हैं बढ़ाना, है ना? और अगर इसके साथ जो है या दाल भी आ जाए, यद, यद हाथ को कहते हैं, है ना? तो क्या है? हाथ बढ़ाना, यानी किसी पर दस्त दराजी करना, किसी पर हाथ उठाना, ये फिर उसके माने देता है। समझ आई आपको? वसाता जो है वो क्या है? बढ़ाना, फैलाना, और अगर उसके साथ जो है वो यद आ जाए तो मानी क्या है? के हाथ बढ़ाना या किसी को मारना, किसी के किसी को कत करने के लिए उस पर हाथ बढ़ाना, यानी कत्ल के इरादे से किसी पर हाथ उठाना, तो उसके लिए भी लफ्ज जो है वो बोला जाता है। फिर इसके बाद है दोबारा आया है विवासते यदिया, है ना, तो इसका भी क्या मतलब है, फैलाने वाला बढ़ाने वाला, यदि अपना हाथ, यानी मैं कत्ल के लिए इकदाम नहीं करूंगा क्योंकि शुरू में माँ आ गया, समझ आ गई बात की। फिर आप चले आयत 29 है और 29 आयत में उरीदू है, उरीदू का रूट वर्ड क्या है, रा वाव दाल, है ना, इसके मानी है इरादा करना। फिर इसके बाद है तबुआ, तबुआ जो है इसका रूट वर्ड है बा वाव हमजा, इसका मतलब है लौटना, जब कहीं लौटते हैं, मसलन आप घर से चले जाते हैं फिर आप घर में वापस आते हैं तो क्या है, आप घर की तरफ लौटते हैं, गोया कि आप घर को आबाद करते हैं। तो ये लफ्ज जो है लौटने के लिए भी बोला जाता है और किसी जगह को आबाद करने के लिए बोला जाता है। और आपने पीछे सूरत अल बकरा में भी पढ़ा था फबा ऊ बिगदब मिनल्लाह, हाँ हाँ, तो यहाँ में क्या पता चलता है तबाऊ के गजब मिलल्ला के वो अल्लाह का गजब लेकर लौटे, कौन, बनी इसराइल के लोग। तो तबू यानी लौटना, कोई चीज जो है वो किसी को जो है वो समेट ले किसी चीज को तो उसके साथ वो लौटता है। और इस्म जो है ये गुनाह को कहते हैं, और इस एक ऐसा गुनाह जो कि जानबूझकर किया जाता है, यानी ऊंटनी तेज चल सकती हो और फिर भी जानबूझकर आहिस्ता चले तो ऐसी ऊंटी को आसिमतु नाका कहा जाता है, नाका तु। फिर इसके बाद है यहाँ पे आप देखें बेइस्मी व इस्मी का, इस्मी जो है बा की वजह से नीम के नीचे जेर आ गई और या के मानी क्या है, मेरा गुनाह, लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, उनके लिए या मेरे के लिए बोला जाता है, और का तेरा, इस्मी का तेरा गुना, का यानी दूसरों को, जैसे यू के लिए आप कहते हैं, तो अगर यू मर्द है कोई तो का है, अगर वो औरत है तो क्या है, की है, जैसे आप कहते हैं जजाकल्ला तो काफ पर जबर मर्द के लिए है कि तू एक मर्द को अल्लाह जजा दे या उसका यानी अल्लाह तुझे बदला दे, और अगर औरत को कहना हो तो कैसे कहेंगे आप लोग, कैसे कहेंगे, जजाकल्ला, लगता है कि ब्रेक नहीं सही मनाई, तो कैसे कहने आपने, जजाकल्ला। फिर इसके बाद है आयत 30 में लफ्ज है फा असबहा, असबहा जो है वैसे तो ये स्वाद बा हा के लिए आता है, तो स्वाद बा हा का क्या मतलब होता है, हालत का एकदम बदल जाना, मसलन अब देखें रात होती है फिर सुबह हो जाती है तो हालत बदल गई होती है ना, तो इसी तरह यानी कोई इंसान पहले गरीब था फिर अमीर हो जाए तो असबहा, अमीर था और गरीब हो जाए तो असबहा, यानी सुबह को अमीर था और फिर गरीब हो गया, यानी हालत बिल्कुल बदल गई, फिर वो हो गया, जैसे कोई शख्स जो है उसने गलती की, उसने गुनाह किया तो क्या है कि वो हो गया खसारा उठाने वालों में, यानी उसकी हालत बदल गई गुनाह की वजह से। ठीक है, आगे है बासा, बासा होता है क्या मतलब, भेजना किसी को, उठाना, मबूस करना। गुराब, गुराब का रूट वर्ड है गैन राबा, इसका मतलब होता है छुपना, जब सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज चला जाता है और नजर नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, गुरूब, सूरज गुरूब हो गया। ठीक है, इसी तरह जो कौवा होता है ना, कौवा अरबी जबान में उसको भी गुराब कहते हैं, क्यों, बहुत काला होता है वो, बहुत काला, जैसे सूरज चला जाए तो रोशनी चली जाए तो अंधेरा हो जाए, तो कौवा आए तो रात हो गई, अंधेरा, कालक, गुराब। यबहसु जो है बाहासा, इसके क्या मानी है, कुरेदना, तो बहस और कुरेदना आपस में रिजेम्बलेंस क्या है इसमें, आप देखें कि जब किसी चीज में डिगिंग की जाती है जमीन में और कुरेदा जाता है उसको, तो क्या है कि आप असल की तरफ जा रहे होते हैं ना, आप उससे नफा लेना चाहते हैं। इसी तरह जब आप बहस करते हैं किसी बात पर, डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन के जरिए से आप निचोड़ की तरफ जाते हैं, फ्रूट की तरफ, असल नफे की तरफ जाते हैं, समझ आ गई। तो यह भसू के वो क्या कर रहा था, खोद रहा था, ये यूरियाहू, यूरियाहू का रूट वर्ड क्या है? रा हमजा या, इसका मतलब होता है देखना, और यहाँ पहले यूरियाहू ताकि वो उसको दिखाए, ताकि वो उसको बताए। युवारी का रूट वर्ड क्या है? नहीं, वो राया, इसके मानी होते हैं छुपाना, छुपाना। जैसे कोई भी चीज है, हकीकत है, आप उसको छुपा रहे हैं, अब लाश या उसको मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं तो उसको छुपाना, ठीक है, युवारी। तो ये मैंने इसलिए पूछा आपसे कि यूरियाहू और युवारी को आप मिक्स ना कर दें। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको ये पक्का याद रहे। तो ले यूरियाहू का रूटवर्ड क्या है? ले यूरियाहू का रूटवर्ड क्या है? रा हमजा या। और युवारी का क्या है? वो रा या। अब याद रखें, ले यूरियाहू में वो तो नजर भी नहीं आ रही ना, हमजा नहीं है, बस आपने मिडल में हमजा डालना है, रा हमजा या, और यहाँ पे जो है वो रा या पूरा आप ले लेना है। आगे है सऊता। सऊता जो है असल में इसका रूटवर्ड है क्या? सीन वो हमजा और सू, हाँ सू से है ये लफ्ज, और ये बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा हर उस चीज के लिए जिसको जाहिर करना जो है वो अच्छा ना हो, यानी जिसके जाहिर करने को इंसान अच्छा महसूस ना करे। मसलन शर्मगाह के लिए भी सौता है, इसी तरह लाश है, तो लाश इंसान की, अब वो पड़ी हुई है, सड़ रही है, गल रही है, तो क्या है कि पसंद किया जाता है ना कि उसको ढांप दिया जाए, उसको कब्र में दफन कर दिया जाए, है ना, तो लाश के लिए भी सौता का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। असबहा, फिर वो हो गया, यानी उसकी हालत तब्दील हो गई, क्योंकि कत्ल करने के बाद जब उसने गलती की थी तो भाई को, फिर वो जब दफन ही ना कर सका, उसको तरीका ही नहीं आ रहा था कि अब भाई को क्या करे, तो वो शर्मिंदा लोगों में से हो गया, नादिमीन, नदामत वाले। नदामत तो आपको पता ही है कि किसे कहते हैं, शर्मिंदगी के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और उर्दू में भी आप लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना नदामत का, हाँ, कि किसी पर जो है वो नादम होना, किसी कोई भी गलत काम जब इंसान कर लेता है तो उस पर जो है वो शर्मिंदा होना। और इसका रूट वर्ड क्या है? नून दाल मीम, इसके मानी है पछताना। क्या मानी है इसके? कि जब इंसान कोई गलत काम कर ले तो फिर उसको उस पर शर्मिंदगी हो, उस पर फिर वो पछताने लगे कि ऐसा गलत काम मैंने जो है वो क्यों कर लिया, नदामत वाले लोगों में वो हो जाता है। फिर इसके बाद जो है क्या लफ्ज है? अजल, है ना, और अजल जो है यही इसका रूट वर्ड है, और क्या है इसके मानी अजल के? हाँ, आपकी बात सही है, ये लफ्ज जो है अजल का, ये मुद्दत के लिए भी इस्तेमाल होता है, वक्त और मुद्दत के लिए, किसकी कितनी अजल है, कितनी देर ये इंसान जो है वो दुनिया में रहेगा, और इस तरह, इसी तरह ये लफ्ज जो है ये वजह और सबब के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि ये काम करने की जो है वो वजह क्या है, या इस काम का जो है वो सबब क्या है, तो गोया के अजल का लफ्ज जो है वो सबब के लिए भी इस्तेमाल होता है, है ना। तो ये लफ्ज जैसे अगर ये मुद्दत, वक्त, मौत के लिए भी इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा कि उसकी अजल आ गई, उसका वक्त आ गया, है ना, तो लेकिन यहाँ पर ये किस मानी में इस्तेमाल हुआ है? वजह, वजह के लिए, कि इसकी जो है वो वजह क्या है। कतबना है, कतबा के लफ्जी मानी क्या होते हैं? लिखना, और कभी कभी ये फर्ज के मानी भी देता है, और अल्लाह ताला जब कहते हैं ना कतबना, हमने लिखा, हमने फर्ज कर दिया। आपने सूरत अल-बकरा में पढ़ा था, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। आप देखिए, जब कोई चीज लिखी जाती है तो बहुत अहम चीज को लिखा जाता है ताकि याद रहे, जहनों में रहे, अनमिट हो जाए, और जब अल्लाह ताला किसी चीज को लिखेंगे तो क्या है वो चीज? फर्ज का दर्जा रखती है। फिर इसके बाद है آیت 32 ہے, اس میں لمصرفون ہے. لمصرفون جو ہے سین رافع, حد سے گزرنا, زیادتی کرنا. اس کے بعد آگے لفظ ہے انما, انما. اور جیسے کہ لفظی ترجمے بھی آپ نے یہ لکھا تھا کہ اس کے سوا نہیں, اس طرح کا ترجمہ آپ نے لکھا تھا, تو اصل میں آپ اس کو آپ سرکل کر کے اس کے ساتھ لکھ سکتی ہیں کلمہ حسر. حسر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حسار. حسار کیا کرتا ہے؟ کسی کا گھراؤ کر لینا, کسی کو اریسٹ کر لینا, کسی کو گھراؤ کر لینا, ہے نا. تو جب کسی کے گرد رسی ڈال دی جائے تو یہ ہے نا کہ آپ نے اس کا گھراؤ کر لیا. جیسے یہ خاص لوگ ہیں, یہ خاص چیز ہے, آپ اس کے لیے اس کو ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں. تو انما کا لفظ جو ہے یہ بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. جب بھی آئے گا تو کس لیے آئے گا؟ کہ یہ حکم لازم ہے. انما, سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ انما کلمہ حسر ہے, حسار کرتا ہے, جیسے اہمیت دیتا ہے کسی چیز کو. پھر اس کے بعد جو ہے آپ آگے چلیں تو ہمیں لفظ ملتا ہے کہ یحاربونا. یحاربونا جو ہے یہ حرب سے ہے, اور حرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جنگ کرنا, ہے نا, جنگ کرنا. اور اس کے بعد آپ آگے چلیں تو ہمیں ملتا ہے ویسعونا, سین عین یا. اچھا آپ لوگ بتائیں, حج اور عمرہ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس کی فیملی صحیح کرتے ہیں. صحیح میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں, تو صحیح کوشش کو کہتے ہیں, دوڑ لگانا, کوشش کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, ٹھیک ہے. پھر آگے آپ دیکھیں تو این یو قتلو اور یو سلبو اور تو قطع. تو یہاں پہ ایک بات تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر تینوں لفظ میں شد آئی ہے. شد آئی ہے باب تفیل سے, یعنی یہاں پہ باب تفیل استعمال ہوا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, یہ بھی یہی آ جاتا کہ قتلو, تو کیوں آیا کہ این یو قتلو؟ تو قتل کی بجائے تقتیل, یہ باب تفیل سے ہے. اور باب تفیل میں شدت اور کثرت پر دلالت ہوتی ہے. جب کوئی ورب عام ورب کی بجائے یا کسی دوسرے باب کی بجائے باب تفیل سے آئے تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ شدت, کثرت. کیا مطلب ہے اس کا؟ مثلاً قتلا, قتل کرنا, لیکن قتلا یو قتلو, قتل کرنا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس کے, یا بہت زیادہ برے طریقے سے قتل کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ قتل اگر اس کے اوپر شد نہ آئے نا تو بس قتل کر دیا کسی نے, لیکن قتل اور جو قتل اس طرح اگر آتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ باب تفیل میں سے ہے, جس کے معنی شدت اور کثرت پر دلالت ہے. یعنی گویا کہ تقتیل جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ شر تقتیل پر دلالت کرے گا, ٹھیک ہے. یعنی تقتیل تو کرنی ہے, قتل تو کرنا ہے, پر بری طرح قتل کرنا. تو آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ قتلہ کسی کو مار دینا, لیکن یو قتلو بری طرح مارنا. تو شد جو ہے وہ یہ معنی دے رہی ہے. اور اسی طرح آگے یو سلبو آیا ہے, اور پھر اسی طرح ہمیں آگے تو قطع جو ہے وہ ملتا ہے. تو ان تینوں جگہوں پر جو ہے وہ شد ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, کہ جو بھی سزا دی جائے گی وہ بری طرح دی جائے گی. تو باقی آپ کو قتل تو مارنا ہی ہے, یسلب سلیب سے ہے, سوات لامبا سولی پہ چڑھانا ہے, اور تو قطع قطع کرنا, قاف تو عین کاٹنا ہے, حروف مقطعات آپ نے شروع میں سنا تھا, ہے نا, یعنی کسی کو کاٹ دینا. تو یہاں پر کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. یہاں پہ ارجلہم, ہاں, تو یہ مجھے بتائیں کہ را جیم لام, آپ نے عراب کا فرق دو معنی دے گا. اگر را کے نیچے آپ زیر پڑیں گی تو رجل پاؤں ہے, اگر را کے اوپر زبر آئے گی تو رجل مرد ہے, ٹھیک ہے. تو عراب کا فرق جو ہے وہ معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. آگے جو ہے ہمیں ایک اور اہم لفظ نظر آ رہا ہے, वो क्या है, युन फो। युन फो जो है इसके क्या मानी है, जला वतन करना। इसका रूट वर्ड है नून फा वो या नून फा या, दोनों रूट वर्ड हैं और इसके मानी है कि किसी चीज को जाहिर करना, जला। आप कहती है ना उसने जला बख्शी, रौनक, जैसे किसी चीज को जाहिर कर दिया। इसी तरह ये लफ्ज जो है अगर कहें जला रजुल अन बलदही, इसका मतलब है कि इस किसी को उसके शहर या मुल्क से निकाल दिया गया, जला वतन कर दिया गया। अब आप देखें जलन नहल, नहल किसे कहते हैं, शहद की मक्खी को क्या कहते हैं, नहल। और अगर मैं कहूँ नमल चूंटी, तो आपको पहले सारी आती हैं आपको तर्जमा ना। अच्छा अगर कहेंगे जलन नहल तो क्या मतलब है कि शहद की मक्खियों को जला वतनी दे दी, कैसे, कोई धुआं दिया कि शहद की मक्खियां वहां से निकल जाए, है ना, उनको भगाया गया, उनको उड़ाया गया, तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि निकाल देना। तो यानी एक तो है जलावतनी, लेकिन दूसरा लफ्ज जलावतनी के लिए क्या है, युनफाओ। तो युनफाओ जो है इसके मानी है मौजूद ना रहना, दूर हटा देना, किसी को शहर बदर कर देना, किसी को कैद खाने में डाल देना, किसी चीज को बाहर फेंक देना। जैसे चक्की आटे को जब गंदुम डाली जाती है, फिर आटा पिसता है, तो चक्की आटे को बाहर करती जाती है, उसके लिए भी लफ्ज बोला जाता है। अब हंडिया जो है आपने चूल्हे पे रखी, अब हलीम पक रहा है, दूध उबल रहा है, तो उबाल आया, बाहर आना शुरू हो गया, जो आपका खाना था दाल है या हलीम है, जो भी आपको पसंद है, लेकिन जब वो बाहर आ रहे हैं, हंडिया उबलकर उबाल कर दें, तो उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सैलाब क्या करता है, जब सैलाब आता है समंदरों में पानी में, तो कूड़ा करकट जो बाहर कर दिया जाता है, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह निफाया, निफाया कहते हैं रद्दी चीज को जो परे फेंक दी जाए। तो यहाँ पे भी नफा यनफू के मानी क्या है कि किसी को जो है वो क्या करना, जिल्लत और रुसवाई से निकाल देना, जिल्लत और रुसवाई से निकाल देना, यनफाओ। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आयत 34 जो है और आयत 35, इसमें 4 में तो कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, हाँ आयत 35 में लफ्ज है वसीला का। और वसीला जो है वो सीन लाम और वो स्वाद लाम, ये इनके मानी करीब करीब एक ही हैं, मानी है मिलने के और जुड़ने के। यानी क्या फर्क है इनमें कि अगर वो स्वाद लाम से आए तो मतलब होता है मिलना जुड़ना, अगर वो सीन लाम के साथ आए तो मोहब्बत के साथ जुड़ना। यानी दोनों के मानी में जुड़ना तो है ना, आप पढ़ती है ना विसाल वसल, तो वो स्वाद लाम आया है तो क्या है कि जुड़ना मिलना, और अगर वो सीन लाम आए तो रगबत और मोहब्बत के साथ मिलना। इसी से वसीला है, वो स्वाद या लाम वसीला नहीं, वो अरब के लोग क्या करते थे हर उस चीज को जो
उनको नजर करते थे,
हाँ वो उन्होंने एक ऐसी यानी जानवर जिसको वो अपने बुतों के नाम पर जो थे वो कुर्बान करते थे, उनको भी वसीला कहते थे कि इस तरह ये हमें अल्लाह के करीब का जरिया बना देंगे वसीला। तो बहरहाल यानी यूं ही जोड़ रहे हैं मिल रहे हैं या कुर्ब और मोहब्बत और रगबत के साथ यानी मिल रहे हैं, दोनों के लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो वसीला यहाँ पर मुराद हर वो चीज है जो बंदे को अल्लाह ताला के करीब कर दे मोहब्बत और रगबत के साथ, वसीला। फिर इसके बाद जो है आयत हमारे पास जो 36 है, इसमें तो कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज नहीं है। फिर 37 है यखरुजू और खारिजीना, क्या रूट वर्ड है, शाबाश। मुकीम का क्या रूट वर्ड है, हाँ आगे है वसारिकू वसारिकातू सीन राकाफ सरका, इसके मानी है चोरी करना। कैसे चोरी करना कि किसी की चीज जब उठाई जाए तो दूसरा जो है ना उसको पता ना चले, यानी उसकी गैर मौजूदगी में या फिर छुप कर चीज जो है उसको उठा लेना। तो इसके लिए कुरान में ایک سرقہ کا لفظ ہے چوری کرنا، کہ کسی کی جو ملکیت میں چیز ہے اور محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی ہے اور دوسرا بندہ اسے خفیہ طور پر اٹھا لیتا ہے. دوسرا پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، غلہ ہے نا، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورۃ آل عمران آیت 161 میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ کوئی چیز چوری چھپے پکڑ کر اپنے سامان میں رکھ لینا، یعنی خیانت کرنا، وہ بھی چوری کی قسم ہے نا، خیانت، غل کرنا. تو سرقہ ہو یا پھر غلہ، تو سرقہ عام چوری ہے اور غلہ چوری اور خیانت کی ملی جلی شکل کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے نکال، نون کاف لام، یہ ایسی سزا کو کہتے ہیں کہ دوسرا شخص جب اس سزا کو دیکھے تو اس کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو، ہے نا. یعنی ایک تو ہوتی ہے نا سزا، کہ کسی کو بھی کوئی سزا ملی ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن کسی کو زنجیریں لگی ہوئی ہوں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو اب کیا ہے کہ سارے اس سزا کو جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو سب کے لیے وہ سزا، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کے لیے وہ سزا جو ہے وہ عبرت بن جاتی ہے. تو اسی طرح یعنی یہاں پہ نکال ہے اور تو بس میرا نہیں خیال کہ آیت 39 میں کوئی مشکل لفظ ہے، اور پھر ہے آیت 40 ہے نا، تو 40 جو ہے واللہ علی کل شیء قدیر، تو شین کا روٹ ورڈ کیا ہے؟
شین حمزہ،
شین حمزہ، یا